तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 8 स्वामी द्वारा लिखित जो तत्वार सूत्र नामक शास्त्र है उसके ऊपर की मोक्ष शास्त्र नामक जो टीका रामजी भाई जी की है वह पढ़ते हुए हम पृष्ठ क्रमांक हिंदी 21 और गुजराती 17 इसमें पहले अधिकार के 5वें सूत्र को देखने जा रहे हैं। देखो इसमें एक बात विशेष रूप से बताई जा रही है कि हमें आगम समझना है तो आगम में कौन सी बात किस अपेक्षा से बताई जाती है, यानी आगम समझने की रीत जो है वो इसमें बताई, क्योंकि जो कुछ बातें होती हैं वह कहने के पीछे कौन सा अभिप्राय है वह जब तक हमें भाव भाषण नहीं होता है तो बात ख्याल में आती नहीं। तो यहां कह रहे हैं देखो, निश्चय सम्यक दर्शन आदि शब्दों के अर्थ समझने की रीति, यानी ये अर्थ जो बताना चाहते हैं वो कैसा समझा जाए, यहां की बात नहीं कर रहे, अन्य कोई भी शास्त्र में जो कुछ बात बताई होगी तो उसके लिए एक दो तीन क्राइटेरिया हैं, जैसे कहते हैं कि नए है, निक्षेप है और प्रमाण है, ये तीनों के माध्यम से हम आचार्य क्या कहना चाहते हैं उसको समझ सकते हैं और हमें यथार्थ नक्की उसका अर्थ समझ में आता है। अन्यथा क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगाना चाहेंगे तो यथार्थ अर्थ की प्रतीति या श्रद्धा कवर नहीं होता है। तो यहां पहले ये बात बता रहे हैं कि निक्षेप की बात बता रहे हैं। एक बात हमें ध्यान में रखना है कि निक्षेप जो होते हैं वो गेयों में लगते हैं, गेय, और जो नए जो होते हैं वो ज्ञान में लगते हैं, और जो प्रमाण जो होता है वो संपूर्ण वस्तु को बताने वाला ऐसा कोई वाक्य होगा उसे प्रमाण कहेंगे, और वो भी ज्ञान में ही होगा। अभी हम यहाँ 5वें नंबर का सूत्र,
कोई भी आपको नया भी कोई विषय पढ़ना है, जैसे तत्व के बारे में समझना है, समय दर्शन हो, समय ज्ञान है, कर्म के बारे में भी क्यों नहीं हो, तो उसमें पहले जो लोक व्यवहार होता है उस शब्द को समझने के लिए उसमें ये नाम स्थापना द्रव्य वगैरह भाव वेद से निक्षेप रखें। कोई भी नया विषय आपको समझना है तो सबसे पहले उसमें ये निक्षेप लगाएं। तो ये कौन कौन से निक्षेप है, तो लोक व्यवहार के लिए जो कुछ किया जाता है उसको यहाँ बताएंगे। पहले हम सूत्र पढ़ेंगे और आगे उसका विस्तार समझेंगे तो ये बात और ख्याल में आ जाएगी विस्तार से। सूत्र है 5 नंबर का, पहले अध्याय के 5वां सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासरा।
अब यहाँ ये बता रहे हैं कि नाम स्थापना द्रव्य भावत, ये स है ना बीच में, वहाँ विसर्ग आता है, तह तन यानी तत् तो का न हुआ वो तन्यास यानी तत् न्यास। अब इसका अर्थ भी देखेंगे। क्या कहते हैं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन सात तत्वों का, हमने अभी इसके पहले क्या पढ़े, सात तत्वों के नाम पढ़े थे, उन सात तत्वों का तथा और क्या है, सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। तो ये सम्यक दर्शन शब्द हमने कहाँ पढ़ा है अभी तक और कितनी बार पढ़ा है, जय बिना बताएंगे। हाँ हाँ, उसमें क्या लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन शब्द है क्या उसमें, लेट आते हो और आगे दौड़ते हो, एक बार नहीं, सम्यक दर्शन शब्द दूसरे सूत्र में आया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी है वो, सम्यक दर्शन शब्द नहीं है वो, पहले और दूसरे बहुत अच्छा, पहले और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा, तो मैं कुछ दूसरे ख्याल में था, दो बार हमने पढ़ा है बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या कहते हैं, उन सात तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है, यानी उनके ऊपर किस तरह से व्यवहार होता है वो अभी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। देखो पहला पॉइंट है टीका का, वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के अपेक्षा को लेकर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उन अर्थों में व्यभिचार, इसका अर्थ क्या किया है, दोष दोष न आवे, अपने लौकिक में व्यभिचार का अर्थ बहुत छोटा होता है, वो बात यहाँ नहीं लेनी है, तो कह रहे हैं उन अर्थों में दोष न आए और सच्चा अर्थ कैसे हो यह बताने के लिए यह सूत्र कहा है। ये हमने जो निक्षेप के चार नाम पढ़े अभी, आप बता पाएंगे नितिन भाई,
हाँ निक्षेप स्थापना निक्षेप द्रव्य निक्षेप भाव,
बहुत अच्छा, नाम स्थापना द्रव्य और भाव ये चारों ही निक्षेप है, अब वो क्या क्या उसका अर्थ है इसको भी हम देखेंगे। वैसे तो आपने ये विषय बहुत बार हुआ है, फिर भी यहाँ है तो पढ़ना ही है अपने को।
यहाँ निक्षेप के लिए कौन सा शब्द है,
न्यास, देखो इन अर्थों के सामान्य प्रकार चार किए गए हैं, पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं, ये उन्होंने उसका डेफिनेशन भी दिया है। अभी हमने तो ऊपर क्या लिखा देखा था, लोक व्यवहार, उसकी बात बताएंगे। ज्ञेय पदार्थ अखंड है तथापि उसे जानने पर ज्ञेय पदार्थों में जो भेद यानी अंश यानी उसके पहलू किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं, और उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। निक्षेप नय का विषय है और नय निक्षेप का विषयी है, विषय है यानी विषय करने वाला है, यानी जो नय होते हैं उसका विषय जो है उसको निक्षेप कहेंगे, और नय को ही निक्षेप का विषयी कहेंगे। जैसे गुण और गुणी ऐसा हम बताते हैं, वैसे यहाँ विषय क्या है, तो किसका विषय, नय का विषय, तो उसको निक्षेप कहेंगे, नय का विषय जो है उसको निक्षेप कहेंगे, और नय जो है वह निक्षेप का विषय ही है, यानी नय का विषय करने निक्षेप का विषय करने वाला है। अब निक्षेप के वेदों की व्याख्या
ज्ञान में लगता है,
लोक व्यवहार शब्द माने क्या कहना चाहते हैं,
लोक व्यवहार है ना, अभी हम ये इसको इसको जानना चाहते हैं। मैंने आपको बोला इसको जानो, इसको यानी किसको, तो हमने इस चीज का कोई नाम रख दिया, तो हमने इसका नाम रख दिया पेंसिल। ये लोक व्यवहार के लिए हमें कुछ नाम लेना आवश्यक है, तो हर चीज का कोई ना कोई हमने नाम रखा है, तो यह है निक्षेप, नाम निक्षेप। आगे वो सब वही तो विषय आएगा, यहीं पर मैं पूरे निक्षेप बताऊंगी। जैसे स्थापना निक्षेप, किसी अन्य चीज में अन्य का हमने उपचार किया, जैसे हमने चित्र बनाया, ये हमारे राजा, यहाँ पुतला बना, ये हमारे शिवाजी महाराज, तो क्या हुआ, वो शिवाजी महाराज है क्या? तो उनके जैसा वहाँ कुछ आकार वाला पुतला या चित्र बनाया, और उसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे शिवाजी महाराज है। बच्चे को हम चित्र बताते, ये देखो ये सिंह है, ये गाय है, ये सिंह का चित्र है, सिंह जैसे बनाया है, तो उसमें हमने वो है ऐसा व्यवहार किया। या कभी कभी क्या है, उस आकार जैसा भी नहीं हो, तो हम कुछ खेल खेलते हैं, या शतरंज जो है, ये हमारा हाथी है, ये हमारा घोड़ा है, तो हम तदाकार तदाकार भी जो उसके भेद है, तो हम किसी में किसी की स्थापना करें। दो भिन्न भिन्न वस्तु है, हमने भगवान जैसे एक मूर्ति बनाई, और ये हमारे महावीर भगवान है, हमें उसकी उसमें स्थापना की। लोक व्यवहार क्या है कि हम उनकी पूजन करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वो महावीर भगवान वत वहाँ अपना सारा व्यवहार, ये लोक व्यवहार की। और भी द्रव्य भाव की जब आगे चर्चा आएगी उसकी भी बात होगी। तो नए तो ज्ञान में लगते हैं, ज्ञान ने जाना कि इस एंगल से ये ऐसा है, ये ज्ञान ने जाना, उसको नए कहेंगे। और वस्तु में जो एंगल जिसको ज्ञान जान रहा है उसको हम निक्षेप कहेंगे। तो वस्तु में हमने नाम रखा तो वो नाम निक्षेप हुआ, और ये जानने वाले नए को नाम नहीं कहेंगे, वो तो यानी उसमें जो कुछ अलग अलग भेद पड़ेगा।
यानी यहाँ जो निक्षेप हम देख रहे हैं वह लोक व्यवहार ही है, ऐसा किसी को कहना रही है तो टकलू है, यानी हम समझते कि उसके सर पे बाल नहीं है और ये तो दाढ़ी वाला है। वैसे तो हर पुरुष को दाढ़ी होती है, कोई मुंडवा था कोई बड़ा था, ख्याल में है ना, लेकिन वो दाढ़ी वाला तो है ही, ये लोक व्यवहार है।
लेकिन हो जाएगा भाव निक्षेप,
वो देखेंगे भाव निक्षेप जिसके वर्तमान में है उसको कहेंगे, और हम आपको द्रव्य निक्षेप से कह रहे हैं। क्या नहीं है बोलो, आप दाढ़ी वाले नहीं हो,
नाम रख रहे हैं, तो नाम क्यों रखे, वो नाम के भेदों में चला जाएगा।
हाँ, ये तो भैया लोक व्यवहार क्या है ये देखने की हम कोशिश करें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो नाम निक्षेप, अभी यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, गुण जाति या क्रिया की अपेक्षा किए बिना, यानी हम किसी को कह दिए कि अभी हमको क्या बता रहे हैं,
डाया भाई
चलो डाया भाई नाम रखा, और वो हो सकता है गांडा भाई, और हमारे यहाँ एक गांडा भाई थे लेकिन वो बहुत होशियार थे, है ना, हम जहाँ रहते थे उसके नीचे रहते थे, और उसका नाम क्या था, जी डी शाह। कभी भी उसको पूछे कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलते जी डी शाह। तो एक दफे बहुत हद किया हमने, हट किया, तो उन्होंने बताया मेरा नाम गांडा भाई और मेरा बाप का नाम डाया भाई। ये क्या है, उसमें गुण है उसकी कोई चिंता नहीं करेंगे, नाम तो बलवीर रखेंगे, और सामने से क्या कॉकरोच भी आवे तो भाग जाओ, तो काहे का वो बलवीर, इस तरह से गुण कोई चिंता नहीं। जाति
गुण उसमें होने चाहिए कोई,
अच्छा कुछ,
क्योंकि आजकल हमारे स्वाध्याय हो गए, अपने बच्चों का नाम सर्वज्ञ रख देते हैं, तो उसमें सर्वज्ञता के कोई गुण नहीं है, नाम रखने में कोई हर्जा नहीं, परंतु वो वैसा होना ही चाहिए। नाम निक्षेप है
लोक व्यवहार,
लोक व्यवहार के लिए बस।
क्योंकि हमें अभी देखो, आपका नाम अरविंद भाई, इनका नाम भी अरविंद भाई, तो इनके पिताजी ने उनका नाम रखा, आपके पिताजी मतलब आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा, کیا معلوم تھا کہ 5-25 برس کے بعد آپ ایک ساتھ آنے والے ہوں. لیکن ہمارے گھر میں 10 بچے ہیں تو اس سے یہ اروند ہے, یہ دوسرا کوئی ہے, یہ تیسرا کوئی ہے, ایسا سمجھنے کے لیے ہم نے نام رکھے. تو وہ لوک روڑھی کو, لوک ویوہار کو اس کے لیے نام رکھتے ہیں. پہلے تو بتائے گن, اور دوسری بات بتاتے جاتی, یعنی کوئی بھی جاتی ہو, جیسا کوئی مان لو کہ انیہ کوئی جاتی کا ہوگا اور اس کا نام کیا اپنی یہاں تھا نا, وہ کیا جنداس, جنداس, اور وہ تو کبھی جنیندر بھگوان کو نمسکار بھی نہیں کرے, اس کا نام ان کے پتا جی ماتا جی نے جنداس رکھا. ایسا ہو سکتا ہے بھلے کوئی جاتی کا ہو, دوسرے جاتی کا نام ابھی ہم نے
جاتی میں ایسا بھی نا کہ پھولوں کے نام رکھ دیتے, وہ پھولوں کی جاتی الگ ہے, منشیوں کی جاتی الگ ہے, اس طرح سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں. یہ سارے وہ کمل ہے, کمل ہے, گلاب ہے, جو سوچو سبھی سب کچھ نام ہے.
پھر جاتی کہو یا کریا, کریا کچھ کی کچھ ہوتی ہے اور نام کچھ الگ ہوتا ہے. ان کی اپیکشا کیے بنا کسی کا یتھیچ نام رکھ لینا, یتھیچ یعنی یتھا اچھا, یتھیچ وہ نہیں یعنی ابھی ہمارے پتا جی کے من میں کچھ بات آ گئی, انہوں نے ہمارا نام رکھ دیا, نام گورے لال اور ہوگا کالا کالا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کسی کا یتھا اچھا نام رکھ لینا سو نام نکشیپ ہے. جیسے کسی کا نام دیا, دیکھو جن دت رکھا کنتو وہ جن دیو کے دوارا دیا ہوا نہیں ہے, تتھاپی لوک ویوہار, ابھی آپ کے پرشن کا اتر آیا, پہچاننے کے لیے اس کا جن دت نام رکھا گیا. ایک ماتر وستو کی پہچان کے لیے اس کی جو سنگیا, سنگیا ہے اس کا جو نام رکھ لی, اس کی جو سنگیا رکھ لی جاتی ہے اسے نام نکشیپ کہتے ہیں. ابھی ستھاپنا نکشیپ, ابھی ستھاپنا نکشیپ میں کیا وشیش ہے, دیکھو کسی انوپستھت یعنی ابھی حاضر نہیں ہے وہ چیز, اویدیمان وہاں وہ بات ہے ہی نہیں, ایسے وستو کا کسی دوسری اپستھت وستو میں سمبندھ یا منو بھاونا کو جوڑ کر آروپ کر لینا کہ یہ وہی ہے, سو ایسی بھاونا کو ستھاپنا کہا جاتا ہے. جیسا ہم نے دیکھا ایک مورتی بنائی اور پھر سب نے نکی کیا کہ ہم نے پیسہ دیا, ہم نے پیسہ دیا, ہم نے پیسہ دیا مندر بنانے کے لیے, تو مورتی تو بنائی. آپ نے کہا کہ مہاویر کی مورتی بنانی, آپ نے کہا نہیں پارسناتھ کی بنانی, آپ نے کہا آدیناتھ کی بنانی, تو پھر اس کے اوپر چن کیا تو اس کی ستھاپنا کر جو میجورٹی کہیں, تو کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے منو بھاونا کو جوڑ کر, یعنی اپنی منو بھاونا ہوئے کہ اس کو یہی ان کی ستھاپنا کرنی ہے, تو یہ وہی ہے, سو ایسی بھاونا کو ستھاپنا کہا جاتا ہے. ابھی اس میں ایسا کہہ رہے ہیں جہاں ایسا آروپ ہوتا ہے وہاں جیووں کی ایسی منو بھاونا ہونے لگتی ہے کہ یہ وہی ہے. ابھی ہم نے کہیں دیکھا تھا, کسی سے بات سنی کہ وہ مندر بنانے جا رہے ہیں اور وہ بنانے والے ادھک سے ادھک پیسے والے کوئی ہوں گے, ان کی اچھا تھی سمندر بھگوان کا مندر بنائے مہاراشٹر میں, تو بھی وہاں کے لوگوں نے آبجیکشن کیا کہ آپ ایسا مت کرو کیونکہ سمندر بھگوان جیسے ہمارے پوجیہ کانجی سوامی کی دین ہے تو ان کا اس میں زیادہ سمبندھ آتا ہے تو لوگ بگڑ جائیں گے, بھڑک جائیں گے, تو پھر انہوں نے دوسرے کسی بھگوان کی مورتی وہاں لگانے کا نشچے کیا. بھگوان کی مورتی تو رکھنی ہے لیکن اس میں ستھاپنا کس کی کرنی, اس میں بھی جھگڑا ہوتا. بولا یہاں تو یہ کہہ رہے منو بھاونا, यानी सबके अभी ये तो अन्य भी बातें अनेक होती हैं। अब क्या कह रहे देखो कि जीवों की ऐसी मनोभावना होने लगती है कि यह वही है। स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। तदाकार यानी तद आकार, जैसा किसी का जो आकार हो उसको उस आकार से बनाना तदाकार और अतदाकार। तो अभी ऋषभ देव की यहाँ मंदिर में मूर्ति लगती है वो तदाकार है या अतदाकार है? अतदाकार है। आप क्या बोलते हैं? तदाकार। आप क्या बोलते हैं? अतदाकार। उनकी तो 500 मीटर हाइट थी आदिनाथ भगवान की जो मूर्ति अपने मंदिर में, मान लो 4 फुट की है, 5 फुट की है, 3 फुट की है, और उनकी हाइट कितनी थी ख्याल में ना? तो वो बात अलग है, आकार की बात चल रही
है।
बिल्कुल नहीं आएगी क्या?
बस मनुष्य का राय इतना ले लेना, तदाकार अगर कहना चाहते हैं तो उनको तदाकार बोलते हैं वो, पर वो उनके जैसे आंख नाक नहीं है ना उनके, हमें क्या पता है, हमने ना उनके तो कोई फोटो नहीं अपने पास, तो हमने इमेजिन करके वैसे ही बना दी मनुष्य का आकार बना।
अभी हमारी आपकी जो कोई रेगुलर या हाइट चल रही है उसके अनुसार हमने मूर्ति बनाई। अब बाहुबली भगवान की जो चरण बिल्कुल में मूर्ति है उसकी क्या बात करेंगे आप? तदाकार है क्या? तदाकार है बिल्कुल। लेकिन अभी मान लो कि हम एज अ शेप उनके जैसा है, भगवान का या मनुष्य का जैसा होता है, उस अपेक्षा से उसी मूर्ति को हम तदाकार कहेंगे। हाँ जी,
आप साइज ले रहे हैं और शेप ले रहे,
दोनों ही तरह से हम बोल सकेंगे। अब यहाँ और दूसरी बात बताएंगे, तदाकार का यहाँ और भी अनेक अर्थ बताएंगे। क्या है देखो, यहाँ कहते हैं स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापना में करना, सो तदाकार स्थापना। अभी ये आकार हो या आकार का क्या अर्थ निकालेंगे हम? इस पर से मैंने ये इन्फरेंस निकाला। अब मनुष्याकार है कहेंगे तो हम अपने क्या बोलते हैं, अभी आपको मालूम है, सुनना हो, ये जो भवनवासी है उनके हर एक भवन में मंदिर है और एक एक मंदिर में 108 मूर्तियां हैं और सब 500 धनुष वाली हैं।
पद्मासनस्थ
यानी अब हम उसको क्या कहें, क्योंकि अपने यहाँ गर्भभूमि में 500 धनुष की हाइट तो पहले काल में होती है और वो तो अकृत्रिम जिनचैत काल है भाई, चौथे काल की शुरू, वो तो अकृत्रिम जिनचैत काल है, वहां तो किसी ने बना ही नहीं है, वो तो बस बनी बनी है। अब इसलिए मैंने वो पॉइंट को जरा विशेष पकड़ के रखा। देखो क्या कहते हैं, जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापना में करना सो तदाकार स्थापना है, और चाहे जैसा आकार कर लेना। अभी इन्होंने इसमें थोड़ी सी और अलग बात बताई, चाहे जैसा आकार कर लेना यानी कैसा? कि अभी आपने शतरंज की बात की ना, तो उसमें हम ऐसा कोई विशिष्ट आकार का ये घोड़ा है, तो घोड़ा जैसा मुंह भी नहीं उसका, फिर भी उसको घोड़ा कहेंगे। राजा जैसा नहीं, खाली ऊपर मुकुट लगाया हुआ ऐसा एक लकड़ी का सोंगटी होती है, उसको राजा कहेंगे, किसी को वजीर कहेंगे। और तो और वो प्यादा भी रहता है, प्यादा बोलते ना, क्या बोलते है? वो तो सिपाही है, वो कैसा है? लेकिन ये अतदाकार, अभी आपको तो बहुत सारी बातें मालूम नहीं है। पहले के जमाने में यानी हमारे पिताजी बताते थे कि घर में कोई फंक्शन है, विधि विधान है, पूजन है, वहां तो ऐसा रहता है कि स्त्री पुरुष दोनों साथ में बैठने चाहिए उस पूजन में, लेकिन स्त्री कुछ कारण से मायके गई हो, कहीं गई हो, तो उसकी जगह वो पाटले के ऊपर ऐसी सुपारी रखते थे और उसमें अभी भी करते थे, हमने तो उस जमाने में सुनी हुई बात। तो ये सुपारी रखो, ये भी मेरी स्त्री है, चलो अभी चालू करो और सुनना है। हाँ बिल्कुल, तंदुल में करते हैं, अत्र उतरा उतरा उसमें ये करते हैं, उसमें भी स्थापना ही कर रहे हैं ना हम, वो तदाकर साहब, और मूर्ति को तदाकर इस अपेक्षा से कर। अब दूसरी क्या बात है, पहले के जमाने में वो राजपूत लोग लड़ाई करने जाते थे, तो यहाँ घर में कोई चलना काम करना है, मतलब किसका ये रिलीजियस कोई विधि विधान करना है, तो तलवार को रखते थे, ये मेरा पति चलो चल करना, ये अतदाकार साहब। अभी बहुत इतनी बातें हैं इसमें, कितनी बताएंगे हम, ये तो आप तो समझ जाएंगे।
पहले की कुछ स्टोरीज आए हैं इसे, वर्तमान योग की, सात भाई थे, उनकी शादी करनी थी तो छोटा वाला गया लड़ाई करने, तो मैरिज में उसकी तलवार रखी, अभी भी होता नहीं मैरिज होता है नहीं सुना नहीं सुना
किया नहीं है।
अरे वो उधर अमेरिका में, वो अमेरिका में और ये इधर, तो टीवी पर उसका पिक्चर लगा है, ये जो कुछ है फोटो में,
वो जो करते करने दो, वो अदाकार शादी हुई, उसको आप लोग क्या लेना, अपने को स्थापना की बात करनी है। आपको मालूम होगा कि जब ही दूल्हा आता है शादी के लिए, तो तलवार हाथ में रख के लगता है, और वो ऊपर जो ये रहता है ना टोक, वो किसको जाते आते लगे नहीं बोल के लिंबू लगा, तो बोलते नजर नहीं लगे इसलिए। अरे बहुत कुछ नाटक है इसके अंदर, ये क्या है, बहुत सारे शादियां हमने अटेंड करी ना, सब मालूम है किधर क्या चलता है। ये तो उसको क्या खांडवो बोलते ना, क्या खांड यानी तलवार, खड़ग जिसको हम कहेंगे,
कच्ची लोग में तो हाथ में तलवार रखते हैं, शादी में जाते
हैं खाली उसी टाइम, सब सब अपने गुजरातियों में
क्षत्रिय थे, तो ये परंपरा शादियों में चालू
रहेगी।
एक एक पांच देते बाकी किसको, ये अपने को क्या देखना है, तदाकार और अतदाकार। इन्होंने अतदाकार चाहे जैसा आकार कर लेना, और विशिष्ट आकार को तदाकार का, तदाकार स्थापना है, सदृशता को यानी समानता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं मान लेना चाहिए। क्या बताया, सदृशता यानी वो समानता है वही उसका निक्षेप का कारण है, ऐसा नहीं मानना। यानी हमने कुछ भी कहा कि ये राजा है, तो उसमें राजा में उसमें कोई सदृशता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा फिर भी चलेगा, ऐसा बता। फिर से, सदृशता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं मान लेना चाहिए, असदृशता में स्थापना कर सकते हैं, ऐसी बात नक्की हो गई ना। उसका कारण तो केवल यानी सिर्फ मनोभावना ही है, जन समुदाय की यह मानसिक भावना जहां होती है वहां स्थापना निक्षेप समझना चाहिए। वितराग प्रतिमा को देखकर बहुत से जीवों के भगवान और उनकी वितरागता की मनोभावना होती है, इसलिए वह स्थापना निक्षेप है। नाम निक्षेप, अभी ये बहुत अच्छा पॉइंट है देखना, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में यह अंतर है, यानी डिफरेंस ये है कि नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता। यानी हमने हमारे बेटे का नाम महावीर रख दिया, तो सब आते जाते सलाम करने लगे, ऐसा पूजा अपूज्य ये गरज नहीं है हा? और स्थापना निक्षेप में यह व्यवहार होता है, यानी कौन सा, पूज्य अपूज्य का व्यवहार। ऐसा अभी आपने बताया कि हम पूजन में तंदूल चढ़ाते हैं, लवंग चढ़ाते हैं, जो भी है स्थापना करते हैं, और उस स्थापना किए हुए तंदूल को हम पूज्य मानते हैं। देखो एक बात आपको ख्याल में आई होगी कि ये जो हम अष्टद्रव्यों से पूजन करते हैं उसको निर्माल्य कहते हैं, यानी उसका हम स्वयं चढ़ाने की बात की बात है ना। अष्टद्रव्यों से पूजन करते हैं तो वो जो अष्टद्रव्य है उसको अपन स्वयं उसका ये नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, उपयोग में नहीं लाना। इसमें भी बहुत से प्रश्न होते हैं, फिर किसको देना? तो हमने कहा कि पुजारी को देना, मान लो हमने कहा नहीं, तो पुजारी को देना कहना यह भी अनुमोदना हुई कि नहीं? अभी क्या बताएं आपको, हम वो किधर जबलपुर में कौन से गांव में गए थे, जबलपुर ने कौन सा ललितपुर, वहां इतना बड़ा मंदिर, मतलब एक मंदिर के अंदर 15-15, 16-16 अलग अलग ठिकाने में स्थापना की हुई मूर्तियां, और एक एक बेदी में समझो ना कम से कम 20-25-50 तो मूर्तियां। वहां के तो ऐसे ऐसे मंदिर है कि आप गाइड लेके नहीं जाते तो वापस नहीं आ सकते। ईद के अंदर एक सब कैसे घूमो वो बराबर लावे तो अच्छा बाहर आए क्या, फिर अपनी चप्पल दिखते हैं तो ठीक है बाहर आए। तो वहां मैं ये कह रहा था कि इतना रोजाना इतना ये अष्टद्रव्य चढ़ाया जाता है तो वहां क्या बोलते हैं, वो धर्मशाला के टेरेस के ऊपर मतलब सज्जा रहता है उसके ऊपर इतना बड़ा सब, फिर उधर बैठे रहते दो चार जने, सुपारी अलग, खारिक अलग, लवंग अलग, वो अलग। मैंने कहा ये क्या करते हैं, जाके बाजार में बेचते हैं, क्या करें हमारा पेट है। हाँ जी
सर,
हाँ बादाम जो है ना वो उनके पास जावे तो सस्ता देते तो अपन उससे खरीदते, उधर चढ़ाते वही, फिर उसके पास जाते वही, हम लाते वही। विभी दादर में एक ऐसा वो बादाम बेचने वाला है, ड्राई फ्रूट वाला था, उसके पास मैं ढूंढते गया तो इधर कोई उस समय में 150 रुपया किलो मिलता हो तो ये 125 रुपया देता है, तो मैं उसके पास से लेने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एक दो दिन क्या हो गया, उसके ऊपर चंदन लगाया हुआ टिकला निकला। मैंने कहा भैया ये कहाँ से है, क्या है? उसने बताया साहब हम ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने कहा भगवान तूने अच्छा बताया मुझे, हमें पता नहीं है।
चढ़ाते हैं ना मौसमी आम वगैरह तो कहते हैं ये पंडित के बगीचा का, और ये तो रेगुलर पंडित है नहीं, वो पुजारी को पंडित कहने की पद्धति वहाँ को नाम पंडित के बगीचे का।
ये कहाँ से कहाँ विषयांतर हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये बातें चलती हैं और हमें सावधानी बरतनी है बस, और क्या है। तो चाहते हुए भी कभी कभी सावधानी नहीं हो सकती सही रूप से। अभी हमने ये देखा कि स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार होता है, नाम निक्षेप में नहीं।
मैं नाम का पढ़ रही थी और
अब देखो द्रव्य निक्षेप की बात करेंगे। भूत द्रव्य निक्षेप में क्या होता है, भूत यानी भूतकालीन और भविष्यत यानी भविष्यकालीन पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना या हमारे ज्ञान में जानना उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे अभी तो कहा नौकरी नहीं मिलते हैं, मैं जब छोटा था तब वो हमारे घर में 10-5 नौकर होते थे, ए सेठ। अभी 1.5 साल का बच्चा हा? उसको सेठ बोलते थे क्योंकि मेरा बाप सेठ, तो ये भी आज मैं कल जाके सेठ बनने वाला है, तो वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे हम देखते हैं राजा के बेटे को भी युवराज कहा जाता है, तो वो राजा ही है। जैसा इंद्र और प्रतिंद्र होते वैसे राजा और युवराजा, लेकिन वह भी क्या है, द्रव्य निक्षेप। अभी ये तो मैं आपको कल बात इन्होंने बताई थी तो हमारे भावी तीर्थंकर कौन है सर? कृष्ण भगवान। कोई बात नहीं, अपना क्या जाते बोल ले तुम। अभी कहाँ है वो? हाँ, तो अभी हम उनको तीर्थंकर बना दिया। तो ये द्रव्य निक्षेप से सही है, घबराना मत। हाँ, पहले तीर्थंकर की बात हम पूछ रहे थे। कोई बात नहीं, तो वो कौन है? श्रेणी है क्या अभी वो? फिर तो आगे जाके बनेंगे, फिर भी हम उसको श्रेणी अभी के वर्तमान पर्याय यानी यहाँ भूतकालीन पर्याय में उसका आरोप करते हैं। तो क्या कहा देखो,
भूत तीर्थंकर के नाम माने वो भी
द्रव्य। हाँ देखो,
कौन किसको?
महावीर।
हाँ वो अभी वर्तमान, परंतु एक अपेक्षा ऐसा भी है, स्थूल वर्तमान लिया हमने, हमारे वर्तमान अवसर पीने के वो तीर्थंकर है, तो उनको वर्तमान के हम कह सकते हैं एक नए की अपेक्षा से, वो भी ऋतु शुक्र वो नए वगैरह।
यहाँ तो निक्षेप की बात चल रही है,
यहाँ निक्षेप की बात।
तो आप अभी भगवान महावीर का आज निर्वाण महोत्सव है हम कहेंगे, तो क्या होता है वहाँ पर? वो तो अभी सिद्धावस्था में है, लेकिन वही जीव भूतकाल में यहाँ के भगवान महावीर थे, तो और उनके ऐसे ऐसे इतने साल का निर्वाण वर्ष है, ऐसा करके हम उनको मनाते हैं, वो भी द्रव्य निक्षेप कहा जाएगा। भविष्य और भूतकालीन पर्यायों को मुख्य करके क्या कहते हैं? भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता को लेकर क्या कहना? उसे वर्तमान में कहना यानी जानना, सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेणी राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना या जानना, केवल कहने की बात नहीं, तुम्हारे ज्ञान में भी चल रहा है तो निक्षेप की बात हो रही है। और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को, एक भगवान महावीर की बात नहीं करी, महावीर आदि यानी पहले के 23 भी ले लेना उसके, वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना जो हम रोज करते हैं, और नहीं करते हो तो करना चाहिए। आप बोलेंगे हमारे घर में मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं, सामने शास्त्र रखो और फिर पूजन करो। किसी की नहीं करनी तो कम से कम सरस्वती पूजन तो कर सकते हो कि नहीं? देखो अपने यहाँ देव गुरु और शास्त्र बिल्कुल आदरणीय पूजनीय अष्टद्रव्यों से पूजनीय है, तो किसी को भी अभी तो मान लो कि अभी क्या बोलते हैं बाय वे यानी पड़वाट बोलते ना जिसको, क्या बोलना, चोर रास्ता, वास्तव में तो मंदिर में ही जाना चाहिए, वो यहाँ नहीं होता है तो ये तो कम से कम करे, 10-15 मिनट लगते हैं जास्ती नहीं। तो कहेंगे कि तीर्थंकरों का वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना सो द्रव्य निक्षेप है। अब भाव निक्षेप की बात, केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता, यहाँ किसकी बात चल रही है? वर्तमान पर्याय में जो केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना या जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध है, उन्हें सिद्ध कहना जानना सो भाव निक्षेप है। ये इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था, किसी राजा को पूजन करते वक्त देखा और किसी ने उसको पुजारी कहा तो भाव निक्षेप से सही है। अब चौथा पॉइंट, जहां सम्यक दर्शनादि या जीवा जीवादि, ये दो बार जीव जीव क्यों लिखा भाई?
जीव,
अच्छा जीव और अजीव दोनों मिलकर जीवा जीवादि हो गया। सम्यक दर्शनादि या जीवा जीवादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहां कौन सा निक्षेप लागू होता है सो निश्चय करके जीव को सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिए। सूत्र एक में मैं लिखाओ जय भाई सूत्र एक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तथा मोक्ष मार्ग यह शब्द तथा सूत्र दो में सम्यक दर्शन यह शब्द यानी तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन यह शब्द भाव निक्षेप से कहा गया यानी वर्तमान में वो उसकी परिणति है उसकी वाचा ये जो पहले
हमारे में नहीं दिखाया
अच्छा कोई बात देखो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमने पहले दो सूत्र में सम्यक दर्शन ये शब्द पढ़ा है और वो जो वहां लिखा गया है वह भाव निक्षेप से कहा गया है ऐसा समझ रहे थे अभी स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप में भेद वो है क्या इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ना है क्या उसका अर्थ पढ़ना है हाँ भाई दोनों अच्छा 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 हाँ जी हाँ इन स्थापना द कॉनोटेशन इज मियरली एट्रीब्यूटेड कॉनोटेशन का अर्थ होता है उसका अर्थ संपूर्ण अर्थ अर्थ होता है कॉनोटेशन का अर्थ होता है संपूर्ण अर्थ जिसको हम कहेंगे इज मियरली एट्रीब्यूटेड यानी हम उसका जो अर्थ बता रहे हैं वो आरोपित कथन है इट इज नेवर देयर यानी वो वहां होता ही नहीं स्थापना में ये स्थापना जिसमें कर रहे हैं ना वह तो आरोपित ही है ऐसा बता रहे इट कैनॉट बी देयर इट इज नेवर देयर एंड इट कैनॉट बी देयर दोनों तरफ से बताया
क्योंकि किसी अन्य वस्तु में अन्य वस्तु की स्थापना की है इसका अर्थ वो तो वस्तु उसमें है ही नहीं है भिन्न ही वस्तु में स्थापना होती है
इन द्रव्य इट विल बी देयर और हैज बीन देयर द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू इज दैट इट इज नॉट देयर नाउ
इन द्रव्य का अर्थ क्या है द्रव्य निक्षेप में जो हम वहाँ बता रहे हैं पर्याय की बात वो भूत भविष्य में होगी या भूतकाल में हो चुकी है इन द्रव्य ने इन द्रव्य निक्षेप इन स्थापना ने भी इन स्थापना निक्षेप ये सब
इट विल बी देयर और इट हैज बीन देयर इट विल बी देयर यानी भविष्यवत हो गया भविष्यत और इट हैज बीन देयर यानी भूत में हो गया द कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू इज दैट इट इज नॉट देयर नाउ यानी वर्तमान में वो है नहीं एंड सो दैट एक्सटेंड कॉनोटेशन इज फिक्टिशियस इन बोथ फिक्टिशियस यानी वो है नहीं खोटा है
उपचार
से अब अर्थ स्थापना निक्षेप में बताना मात्र आरोपित है
ये कथन जो है वो हाँ,
उसमें वह यानी मूल वस्तु कदापि नहीं है यानी जिसकी हम स्थापना कर रहे हैं वह मूल वस्तु तो उसमें नहीं है वह यहाँ कदापि नहीं हो सकती यानी हमने इसको घोड़ा कहा तो घोड़ा तो इसमें है नहीं लेकिन हम आरोपित कर रहे कि इसको शतरंज का घोड़ा है ऐसा और कदापि नहीं हो सकती अगर होती हो तो फिर उसकी स्थापना करने की क्या जरूरत है ख्याल में है ना और द्रव्य निक्षेप में वह मूल वस्तु भविष्य में प्रकट होगी अथवा भूतकाल में थी दोनों के बीच सामान्यता यानी समानता इतनी है कि वर्तमान काल में वह दोनों में विद्यमान नहीं है और उतने अंश में दोनों में आरोप है यानी वो है नहीं इसके लिए उसके आरोपित कहा गया है अभी पांचवे सूत्र का सिद्धांत, भगवान के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप शुभ भाव के निमित्त है इसलिए व्यवहार है द्रव्य। ये समझ में आया क्या बताना है? द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय में पश्चात प्रकट होगी यह सूचित करता है। भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है ऐसा, ये सम्यक दर्शन की बात चल रही है? समझना चाहिए निश्चय और व्यवहार नय का स्पष्टीकरण इसके बाद के सूत्र की टीका में किया है, वो आगे आ जाएंगे। अभी अगला जो सूत्र है वो कह रहे हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन आदि का उपाय
अधिकरणी जानने वो वहाँ अलग रह दिया उन्होंने। यहाँ लिखा है सम्यक दर्शन आदि तथा तत्वों ने जानवानो उपाय। पहले किसी चीज को जो हम कहते हैं तो उसमें ये बातें निक्षेप की थी लोक व्यवहार के लिए, उसका नाम रखा, किसी ने स्थापना की, द्रव्य भाव की बात की। अब कहते किसी भी चीज को, कोई भी शब्द है, कोई भी वस्तु है नहीं, तो उसको जानने के क्या क्या उपाय? वो तो निक्षेप तो हमने वस्तु में रखे थे, निक्षेप करने नहीं रखना, वस्तु में रखे हमने, नाम रखा उसमें, स्थापना की, जो कुछ है। अब यहाँ कह रहे ये जो कुछ है वस्तु को जो जानने का जो कुछ उपाय है, ये ज्ञान के द्वारा हम उसको जान रहे हैं, तो उसमें ये दो भेद करेंगे, प्रमाण नहीं होगा, वो ज्ञान में हो जाएगा। तो सम्यक दर्शनादि तथा तत्वों ने जानवानो उपाय, किसी भी चीज को जानने के ये उपाय, उसमें क्या लिखा है? सम्यक दर्शन आदि का उपाय।
आदि में आपने वो अलग सात तत्वों की बात रखी,
पढ़ेंगे सूत्र?
हाँ पढ़ो।
छह नंबर का प्रमाण नये अधिगम,
यहाँ कहते हैं प्रमाण नये ही, यानी उधर विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद अधिगम
है कि पुराने पुस्तकों में वो ग जैसा छपा है उसको र कर दो, वो ग का ही र कर दो नीचे, उसमें बराबर छपा है, वो हिंदी है, गुजराती में।
चलो ठीक है, क्या कहते हैं? सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का अधिगम यानी ज्ञान। भाई कल आपका प्रश्न था ना अधिगम, तो यहाँ लिख रहे अधिगम का अर्थ ज्ञान, यानी सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। तो इसके लिए हमें पहले में पहले प्रमाण क्या होता है और नय किसको कहा जाता है इसको हम देखेंगे। इसको देखने के पहले थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो ये जो नए होते हैं वो तो किस में होते हैं? ज्ञान में होते हैं क्या ज्ञेय में होते हैं? जरा उनको सोचने को उद्युक्त कर रहे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जिनको आता है वो तो झट से भूल देते हैं। हाँ लेकिन हम चाहते हैं कि सब लोग कुछ न कुछ सोचे, क्योंकि ये बात तो अभी हुई थी। तो ये कौन से ज्ञान में नए होते हैं? अभी कोई उत्तर नहीं देगा, मैं पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ देखो उधर तो पेंसिल उड़ गई, आप बताएंगे बहन और किस में नहीं होता है? केवल ज्ञान में नहीं होता है, हाँ वो तो सब जानते हो उनको। अच्छा आप कहते हैं नहीं होता है केवल ज्ञान में, क्यों नहीं होता है इसका उत्तर दे पाएंगे आप? हाँ नलिन भाई आप बताना, केवल ज्ञान में नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे अब एक टुकु ने टच केवा जेवू छे, हाँ बोलो, सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहेंगे? हाँ ऐसा नहीं, ये देखो ये जो है ना, ये हमारा तुम्हारा जो ज्ञान है छद्मस्थों का, लब्धि और उपयोग सहित है, और उनका तो पूर्ण पूर्ण उपयोग सहित है, इसलिए उनमें हमारे ज्ञान में कुछ को मुख्य करना और कुछ को गौण करना, ये फैसिलिटी श्रुत ज्ञान में है, जो केवल ज्ञान में ये फैसिलिटी नहीं है, वो सबसे अच्छी फैसिलिटी है उनके पास, इसलिए हम कहेंगे कि श्रुत ज्ञान में ही नए होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान में नए नहीं होंगे। तो ये शुद्ध ज्ञान में कौन से शुद्ध ज्ञान में होंगे? सम्यक शुद्ध ज्ञान। यहां तक तो बात हमारी ज्ञान में आई। अभी ये नए, नए यानी क्या होता है? देखो प्रमाण में क्या होता है कि सर्व जो प्रत्येक द्रव्य में अनेक धर्म है, अनेक गुण है, जो भी आपको बोलना है, उस सबका ज्ञान होना वह प्रमाण कहा जाता है। यानी प्रमाण में किसी को, और आसान भाषा में समझना है, किसी को मुख्य करके या गौण करके बात नहीं, सबको एक साथ कह देना, उसको हम कहेंगे प्रमाण। और नए क्या होता है? जो उस वस्तु में अनेक धर्म है उसको किसी एक को मुख्य करके बताना, दूसरे को गौण करना, या दूसरे को गौण मुख्य करके पहले को गौण करना, ये नए का, यानी एक अंश को बताने वाला जो कोई वाक्य है या जानने वाला कोई ज्ञान है वो नयात्मक। ये बात अभी इतनी बात हमारे ज्ञान में आई है, इससे आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, प्रमाण पॉइंट नंबर वन, सच्चे ज्ञान को, यानी सच्चे ज्ञान यानी कैसा? निर्दोष ज्ञान को, इसी का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान के कितने भेद है वीरेश भाई? सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? बोलो मिली भाई, जोर से बोलो ना, पांच है, बोलो ना ऐसा पट से, शाबाश। इतना टाइम लगा आपको? हाँ अच्छा अच्छा, बहुत सही उत्तर दिया आपने। देखो सम्यक ज्ञान के पांच भेद और मिथ्या ज्ञान के तीन भेद, वो तो हमने कब से पढ़ के रखा है, पर आज जरा पूछो तो ऐसा लगता है। हाँ क्या कहा? देखो निर्दोष ज्ञान यानी क्या? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। यानी आप भी, आप किसी ने बताया केवल ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं, आपने बताया था क्या? हाँ वो ऐसा है नहीं। अनंत गुणों या धर्म का समुदाय रूप अपना तथा पर वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को, सर्वदेश यानी हर एक बात को, सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता है। और नए क्या है? प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के, यानी प्रमाण ज्ञान के बिना सच्चा ज्ञान होगा ही नहीं भैया।
हाँ
जी
नहीं,
नहीं नहीं, मैं अलग बात बताऊं। प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। यानी हमें प्रमाण से वस्तु को जानना आवश्यक है, तभी हमें वस्तु का स्वरूप पता लगेगा और उसी से नए की पैदाइश होगी। जो प्रमाण द्वारा निश्चित की निश्चित हुए अनंत धर्मात्मक वस्तु के एक एक अंग का ज्ञान मुख्यता से कराता है, सो नए है। ये बात ख्याल में आ गई? वस्तुओं में अनंत धर्म है, इसलिए उनके अवयव अनंत तक हो सकते हैं। अवयव यानी उसके पार्ट्स, अंश, और इसलिए अवयव के ज्ञान रूप नए भी अनंत तक हो जाते हैं, इसलिए नए कितने होते हैं तो वो भी अनंत होते हैं। श्रुत प्रमाण के विकल्प भेद या अंश को नए कहते हैं, यानी श्रुत प्रमाण जो है यानी श्रुत ज्ञान के जो उसमें भी जो विकल्प है भेद है उसको भी नए कहेंगे। श्रुत ज्ञान में ही नए रूप अंश होता है, जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है। यानी दो बातें बताई इसमें, जो नए होते हैं वो अपेक्षा सहित होते हैं सापेक्ष, और फिर प्रमाण भी रखा उसके साथ, यानी प्रमाण की अपेक्षा से बताए गए। प्रमाण में मान लो 10 बातें बताइए, तो कोई बात बताएंगे नए वाला तो ये सापेक्षता से बताएंगे। तो क्या कहा, जो नए है वह प्रमाण सापेक्ष रूप होता है, मति अवधि मन परे और केवल ज्ञान में नए के भेद नहीं होते, है ना बात। अभी ये राइट बिलीफ वाली बात कल करें, क्योंकि इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है।
आपने केवल ज्ञान लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखना चाहिए
इसमें
है साहब, मति अवधि मन परे और केवल ज्ञान।
हाँ, गुजराती में नहीं लिखा है, लिखना चाहिए।
क्या लिखा है वो पढ़ो,
मति अवधि के मन परे ज्ञान भेद पड़ता
नहीं, केवल ज्ञान लिखना चाहिए भाई,
केवल ज्ञान लिखना
वो तो चाहिए ही चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सूजे